अगला रुकू जो है इसके बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। इसके दो टॉपिक हैं आयतों के एतबार से। शुरू की जो आयतें हैं उसका टॉपिक लिखिए मिसाली मुआशरे में रहने वालों के औसाफ, आइडियल सोसाइटी में रहने वाले लोग कैसे होते हैं। और अगला हिस्सा जहाँ से जैद और जैनब के निकाह की बातें होंगी उसका टॉपिक लिख लीजिए रस्मों को तोड़ने के लिए दिल तोड़ने पड़ेंगे। बड़े लोगों के दिल टूटेंगे जब आप कोई रस्म तोड़ेंगे, याद रखिए, लेकिन ये तो करना पड़ेगा। आयत नंबर 35 से 40 आइए पढ़ते हैं। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती वल मुमिनीन वल मुमिनात, पूरी लंबी लिस्ट है, दिल तो चाह रहा पढ़ूं लेकिन आप तर्जुमे में इंजॉय कीजिए और इसकी ज़रा काउंटिंग कीजिएगा ना कितनी चीज़ों में इसको कैटेगराइज किया। बेशक मुसलमान मर्द और औरतें, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, फर्माबरदारी करने वाले मर्द और फर्माबरदार औरतें, और सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, आजजी करने वाले मर्द और आजजी करने वाली औरतें, खैरात करने वाले मर्द और खैरात करने वाली औरतें, रोज़े रखने वाले मर्द और रोज़े रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द और हिफाजत करने वालियाँ, बकसरत अल्लाह का जिक्र करने वाले और जिक्र करने वालियाँ, इन सब के लिए अल्लाह ने वसी मगफरत और बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। कितनी प्यारी लिस्ट है और तरतीब है इसमें। पहले बंदा मुस्लिम बनता है, फिर मोमिन बनेगा, फिर कनूत आता है, फिर सिद्क आता है, फिर सब्र आता है, फिर खुशू आता है, फिर मुतसद्दिक बनता है बंदा, फिर साइम बनता है, फिर हाफिजीन फुरूजहुम, और जिस चीज़ पे तान टूटती है वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरा, फिर तोड़ते बैठते वो अल्लाह के नाम की तस्बीह बन जाता है। वो तस्बीह पकड़े ना पकड़े उसके दिल की हर धड़कन के साथ अल्लाह का नाम होता है और अल्लाह ताला के साथ वो अपने मामले को दुरुस्त करता है। अल्लाह ताला आपको मुझे इन सारी सिफात से मुत्तसिफ कर दे। और इसके बाद अब दूसरा हिस्सा इसी रुकू का, वमा कान लि मोमिनिन वला मोमिनतिन इज़ा कदल्लाहु व रसूलुहु अम्रन अन यकूना लहुमुल खियरतु मिन अम्रिहिम। और देखो किसी मुसलमान मर्द और औरत को अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के बाद किसी अमर का कोई इख्तियार बाकी नहीं रहता। रुकूं ज़रा इधर, इसका जवाब ढूंढिए। आप मत कहेंगे ये ज़ैनब और ज़ैद की बातें हैं या आपकी और मेरी बातें। जब अल्लाह ने या अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला कर जो दिया, अब मेरे आपके पास 1% भी ऑब्जेक्शन लेटर नहीं है कि नो आई कैंट, आई विल थिंक नो। पूरी शरीयत अल्लाह की तरफ से आ चुकी, आई अल्लाह की तरफ से थी, मिली रसूल के ज़रिए, तकदीर के फ़ैसले। और मैं यहाँ फिर उसी मामले को जो कल से चल रहा है, शोहर और बीवी, जब अल्लाह ने आपकी शादी इस मर्द से करनी थी कर दी, तो फिर आपको इसमें क्या एतराज़ है? और जब आपके नसीब में यही औरत थी तो आप क्यों एतराज़ करते हैं? फिर माँ को क्यों कहते हैं कि कैसी ढूंढी मेरे लिए? और आप बाप को क्यों ताने देती हैं कि यही रह गया था मेरे लिए? कबूल कीजिए, ये बंदा मोमिन की एक अमली तस्वीर है। वो अपनी ज़िंदगी के हर फैसले को अल्लाह का फ़ैसला समझता है और हर हुक्म को अल्लाह का हुक्म समझता है। और अगर ऐसा नहीं तो देखिए, याद रखो जो अल्लाह और उसके रसूल की भी नाफरमानी करेगा वो तो सरीह गुमराही में पड़ेगा। याद करो जब के तो उस शख्स से कह रहा था, कौन कह रहा था? नबी। किससे कह रहे थे? जैद से कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि वो शख्स था जिस पर अल्लाह ने भी इनाम किया। ये नोट कीजिए, जैद का सर खुशी से झुक जाता था इस जुमले को पढ़कर कि अल्लाह ने मेरे बारे में ये बात कही है कि अन्नम अल्लाहु अलैहि। सुभान अल्लाह, अल्लाह भी लोगों को कैसे नवाजता है। और तू दें भी कि तू अपनी बीवी को अपने पास रख और अल्लाह से डर, और तो अपने दिल में वो बात छुपाए हुए था जिसे अल्लाह ज़ाहिर करने वाला था, और तू तो लोगों से खौफ खाता था। आज हम भी लोगों से डरते हैं, लोग क्या कहेंगे। जैद को भी डर था और नबी को भी डर था, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं हालांकि अल्लाह ताला इसका ज़्यादा हकदार था कि तू इससे डरे, बस जब के जैद ने इस औरत से अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली, हमने इसे तेरे निकाह में दे दिया ताकि मुसलमानों पर अपने ले पालक बेटों की बीवियों के बारे में किसी तरह की तंगी न रहे, जबकि वो अपनी गरज इनसे पूरी कर लें। अल्लाह का ये हुक्म तो होकर ही रहने वाला है। जो चीज़ें अल्लाह ने अपने नबी के लिए मुकर्रर की हैं इनमें नबी पर कोई हर्ज नहीं, यही अल्लाह का दस्तूर है, इनमें भी रहा जो पहले हुए। اور اللہ کے کام اندازے پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ سب ایسے تھے کہ اللہ کے احکام پہنچایا کرتے تھے اور اللہ ہی سے ڈرتے تھے، اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہ ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر دیکھیے کتنا بڑا فیصلہ، ماں کا نا محمد نبا حدم رجالکم ولاک رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئن علیما۔ لوگو کان کھول کے سن لو، قیامت تک کے لوگ، صرف مسلمان نہیں سب سن لو، اور آج جھوٹی نبوت کے دعوے داروں تم بھی سن لو، اور ان دعوے داروں کے فالورز تم بھی سن لو۔ کیا تمہارے مردوں میں کسی کے باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے۔ کیا مطلب؟ سیل ناٹ سٹیمپ، بہت بڑا فرق ہے۔ ختم، ختم سے مہر، مہر کب لگتی ہے؟ جب خط لکھ کے اس کے اوپر سٹیمپ کر دیا تاکہ اندر کی چیز باہر نہ آئے اور باہر کے اندر نہ جائے۔ اور ایک سٹیمپ ہوتی ہے جو خط کے باہر لگتی ہے ٹکٹ کے طور پہ، دونوں میں بہت فرق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں جو لفظ ہے یہ سٹیمپ نہیں ہے، ورنہ لوگوں نے لے کے پکڑی اور گلی گلی لگاتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس ہے سٹیمپ، نہیں، سیل تھے آپ، آخری نبی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اب اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات دیکھیے کہ اس میں جو ہم نے پڑھی اس شروع کے حصے میں، ایمان والوں کی صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پہ عمل کی توفیق دے۔ ایک سے ایک قدم پہ چلتے جائیں گے، نیکیاں بنتی جائیں گی۔ مجھے تو یہ سارے جو احکامات ہیں یہ سٹیپس لگتے ہیں، اور ان پہ سب سے اوپر جا کر ذکر کیجئے، اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھیے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ میں اس کو یاد کرنے کے لیے تسبیح کھولتی ہوں اور میں اب اس کو یاد کروں گی۔ وہ تو کہتے ہیں نا کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ دل کی دھڑکنوں میں نام لکھا ہوتا ہے جس سے پیار ہے۔ یہ بچے چھوٹے چھوٹے، ایک چھوٹا سا بچہ آ جائے گھر میں، ہر آئے گئے کوئی اس نے آج یہ کیا، اس نے یہ کہا، پروفائل پہ سب سے پہلے تصویر لگتی ہے پوتے نواسے کی، اور پھر اس کے قصے اور کہانیاں، پیار ہے نا۔ ذکر کیا، تذکرے، جو دل میں ہوتا ہے وہ زبان پہ آ ہی جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا نہیں ہوتا، یہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے مجبور ہوتا ہے بندے کا دل، اس کو کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو آج نیت کیجئے، چند دن رہ گئے ہیں اور آگے زندگی جتنی بھی ہے، اپنی زبان کو تر کیجئے، سافٹن یور ٹنگ، گیلا کریں اللہ کے ذکر سے۔ جس وقت جو فیلنگز اللہ سے آئیں وہ لفظ بولے، کیونکہ ہر ذکر میں لفظ اللہ ضرور آتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ، ان شاء اللہ، انا للہ، بسم اللہ ہی توکل۔ تو مجھے تو لگتا ہے بندہ مومن کی ساری ڈکشنری میں ایک کامن ورڈ ہے لفظ اللہ، اللہ کا لفظ بندہ مومن کے دل کی دھڑکنوں میں۔ تو ذکر کیجئے، باتیں کم ہو جائیں گی۔ باتیں کم ہوں گی نا تو غیبتیں بھی کم ہو جائیں گی، چگلیاں بھی کم ہو جائیں گی، آپ کے اندر انرجی نہیں رہے گی دوسروں سے بات کرنے کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جو مین حصہ اس سورت احزاب کے ساتھ ہے وہ سمجھ لیجئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، اور زید جو تھے وہ حضرت خدیجہ کے یہ غلام تھے، اور حضرت زید خاندانی طور پہ عرب تھے، لیکن جیسے کوئی بچہ بچپن میں گم جائے، کڈنیپ ہو گیا، اغوا ہو گیا، پھر کوئی اس کو پکڑ کر غلام بنا لے، تو یہ غلام ہوئے، بکتے بکاتے یہ مکہ میں آئے۔ حضرت خدیجہ نے ان کو خریدا، شادی کے موقع پہ تحفے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ اس طور پہ کسی کو غلام پیش کرنا ایسے ہی تھا جیسے آج بلینڈر آپ کسی کو گفٹ میں دے دیں کہ جاؤ اس میں جوس بنا کر پیو، جوسر دے دیں، مشینیں ہوتی ہیں نا ہم گفٹ میں دیتے ہیں، اسی طرح غلام ایک قسم کی ورکنگ مشینز ہوتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زید پہ بہت پیار آیا، آپ نے کہا آج سے میں نے تجھے آزاد کیا اور تو میرا بیٹا ہے۔ یہ شروع کی باتیں ہیں، ابھی اسلام تو آیا ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں نا کہ حضرت خدیجہ سے شادی کے کتنے سال بعد آپ کو نبوت ملی؟ 15 سال کے بعد، 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں ملی۔ قصہ مختصر، آپ نے ان کو اس دور کے رواج کے مطابق کہا کہ تم میرے غلام نہیں بلکہ بیٹے ہو۔ جب آپ نے لفظ بیٹا بول دیا تو لوگ کہنے لگے زید بن محمد، ٹھیک ہے، زید بڑے خوش ہو گئے۔ एक वक्त ऐसा भी आया कि जैद के ख़ानदान के रिश्तेदार चचा भाई बाप जो थे वो ढूंढते हुए इनको पहुंच गए। लोगों ने कहा इधर अच्छा गए, देखा पहचान भी लिया, कहा कि देखिए जी ये हमारा बच्चा, अल्लाह के नबी ने कहा जैद पूछ लीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, ले जाए। लेकिन जैद ने कहा कि मैं उस आज़ादी पे इस ग़ुलामी को पसंद करता हूँ, मैं नबी का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं इधर खुश हूँ। आपने उनको इख्तियार कर लिया। अब क्या हुआ, लोग आपको बेटा कहने लगे। आपका अरबों का रिवाज क्या था कि मुंह बोला बेटा, जिसको आज हम देख रहे हैं कि आज इसकी कोई हैसियत नहीं, अरबों में बहुत थी और आज भी जाहिल परस्ताना लोगों में ऐसी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा बेटा समझने लगे। और उस दौर का रिवाज क्या था कि मुंह बोले बेटे की बीवी सगी बहू समझी जाती थी, जैसे आज हमारे यहाँ है। और अगर कभी कोई भी ऐसा मुंह बोला बेटा अपनी बीवी को छोड़ देता, तलाक दे देता या बेवा हो जाती वो, तो वो औरत हराम थी उस ससुर के लिए। जैसे आज एक औरत जो किसी के भी निकाह में आती है तो वो उसके बाप के लिए क़यामत तक के लिए कह लें कि हराम हो जाती है। ये बात थी। अब ये रस्म बन चुकी थी इतनी पक्की कि लोग नस्ल दर नस्ल इसके यूज़ टू हो चुके थे। तो अल्लाह ने ये रस्म जिसकी जड़ें अरब कल्चर में घुसी हुई थी इसको तोड़ना था। याद रखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नमाज रोज़ा का तरीका सिखाने नहीं आए, ये होता तो बड़ा आसान था, मुखालफत किसने करनी थी, लोगों ने खुशी खुशी नबी को मान लेना था। आपकी जितनी मुखालफत 13 साल मक्की दौर में हुई वो इस वजह से थी कि ये आप क्या पीछे पड़ गए हमारे, ये रस्म नहीं करो, ये मेहंदी नहीं करो, ये उबटन नहीं करो, ये पीला जोड़ा क्या होता है, और ये और वो। और रस्मों को उखाड़ना दिलों को तोड़ना होता है। आज भी लोग यही कहते हैं, हमसे किसी का दिल नहीं टूटता। और लोग क्या कहते, क्या हर्ज है, हम कौन सा को चोरी कर रहे हैं ये। तो बहरहाल अब जब जैद बड़े हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए रेकमेंड किया अपनी फुफीजाद बहन जैनब को। जैनब आला ख़ानदान से थी, कुरैशी थी, और अरबों में नसब आज भी बड़ा है, आपको पता ही होगा। इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे हाँ तो कर दी, लेकिन दिल से इनके दिल में ये एक एहसास कमतरी था कि मेरा शौहर जो है वो ग़ुलाम है। ये ऐसी है सिर्फ समझाने के लिए, अल्लाह ना करे कोई आपको, मैं ये नहीं कह रही कैसा है, ये ऐसी है जैसे किसी की बेटी की शादी उसके ड्राइवर के बेटे से हो जाए, तो एक दिल में आ जाता है कि ये बंदा तुम्हारे घर काम करता था और आज मैं इसकी बहू बन गई हूँ। बहरहाल अल्लाह ने ये रस्म तुड़वानी थी। जैनब और जैद की नहीं बनी, यहाँ एक जुमला लिख लीजिए, बड़े बड़े लफ्ज़ों में लिख लीजिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि जब किसी की नहीं बनती और रिश्ता टूटता है, जैनब का दिल नहीं लगता था उसमें, हजरत जैद रखना चाहते थे। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से पहले ही बता दिया कि जैद छोड़ेंगे तो ये औरत अब आपके निकाह में आएगी, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मुंह बोला बेटा कुछ नहीं होता, इसकी कोई हैसियत नहीं है और ये औरत आम औरतों की तरह आपके लिए। अल्लाह के नबी को जैसे मैं अपनी ज़ुबान में कहूँ कि आपका तो दिल ही बैठ गया। देखे ना, अल्लाह ना करे आज के इस गए गुजरे मुआशरे में भी कोई ख़बर फैल जाए कि फ़लाँ ने अपनी बहू से शादी कर ली, तो कैसे जलजले आएंगे, आंधियाँ चलेंगी ना। अल्लाह के नबी इसके लिए तैयार नहीं थे, ये सब कुछ इसमें हुआ। अल्लाह कहते हैं आप लोगों की बातों से डरते हैं, आपको तो ये करना पड़ेगा। अब अल्लाह के नबी चाह रहे थे कि ना ही ये रिश्ता टूटे ताकि मेरी इधर शादी ना हो, कैसे लोगों को बताऊँगा। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी, लेकिन हुआ क्या, वही हुआ जो अल्लाह ने करना था। ये नबियों के ऐसे ही दर्जे नहीं है कि सल्लल्लाहु अला मोहम्मदिन और बारिक अला मोहम्मदिन इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। इन्होंने सारी दुनिया में बुरा बनना पसंद कर लिया, सादिक और अमीन की जगह काहिन और मजनू कहलाना पसंद किया, पत्थर खा लिए, कांटों पे चल पड़े, लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे नहीं बोले। आज हम 10 लोगों के आगे अपनी रस्म नहीं छोड़ पाते, कहते हैं क्या करें, बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, ताने मिलेंगे, इल्ज़ाम होगा, नहीं मैंने तो बलोनियों के जोड़े देने हैं, मैंने तो एक मन मिठाई लेके ही जानी है, मैंने तो 101 जोड़ा देना है चाहे बहू पहने ना पहने। याद रखिए ये जो हालत है, जब ये सारा मामला हुआ अल्लाह के नबी बहुत हिचकिचा रहे थे। जैद का रिश्ता टूटा जैनब से, और यहाँ आप जुमला बोलूँगी, आज हमारे ख़ानदानों में कोई रिश्ता टूटे, माशरे में ही टूट जाए, गली मोहल्ले में ही टूट जाए, तो हम पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं और अपना सारा वो क्यूरोसिटी और तजस्सुस का मादा और रिसर्च का मादा इस काम पे इस्तेमाल करते हैं कि कसूर किसका था, अच्छा कौन था और बुरा कौन था, दो में से एक का कसूर ना निकले हम कहते हैं हम तो पास ही नहीं होंगे इस इम्तिहान में। हाँ, लड़की बड़ी होशियार थी, बड़ी तेज़ थी, मुझे तो पहले ही नहीं पता लग गया था, वो तो दबा के रखने वाली थी, अच्छा तभी टूट गया। और अगर लड़की वालों में जाएंगे, क्या हुआ, वो आपका दामाद, वो तो मुझे दूसरे दिन लगा था, ये क्या आपने अपनी बेटी को दिया। यानी हम पूरे ख़ानदान और दोस्त अहबाब में से इस काम पे नॉमिनेट हो जाते हैं कि दोनों में से एक को सच्चा और एक को झूठा कराएं, है कि नहीं बात। और जिसके सामने जाते हैं ना, उसको सच्चा करके दूसरे को झूठा कराते हैं। याद रखिए, ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने लगा। जैद भी अच्छे, जैनब भी अच्छी, यहाँ लिख लीजिए कि ज़रूरी नहीं कि जो घर टूटे तो दोनों में से कोई बुरा हो, नहीं बनती। दो अच्छे अच्छे लोगों की नहीं बनती। अब आपको मैं अपनी आदत के मुताबिक एक मिसाल से समझा देती हूँ। देखिए, मछली अच्छी चीज़ है कि बुरी है, बोलिए। फिश, मज़े की होती है ना, फिश ऑयल, फिश वेरी नाइस। दूध अच्छा होता कि नहीं, तो आप फिश और दूध दोनों इकट्ठा खा सकते हैं। वो पहले कहते थे पुलबेरी हो जाती है। फिश भी अच्छी, दूध भी अच्छा, नहीं इकट्ठे खा सकते। गोभी अच्छी चीज़ है, और दूध साथ पी लें पेट में गैस हो जाएगी, बादी हो जाएगी। बस यहाँ समझे, अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लें कि किसी मुआशरे में कोई घर टूटे, कोई मंगनी छूटे, कोई रिश्ता टूटे, किसी की बेटी घर आकर बैठ जाए, किसी की बहू कई महीने से वापस ना आए, आपकी ज़ुबान पे एक लफ्ज़ नहीं आना चाहिए कि क्या हुआ, और जा जाके कुरेदें। सारी नेकियां हम क़यामत के दिन उनके हाथ में दे के आएंगे, अगर थोड़ी बहुत हैं भी तो। हज़रत ज़ैनब का निकाह अल्लाह ने आसमान पे करवाया था। जैद ने तलाक दी, इद्दत से फारिग हुई। अब हुक्म क्या था कि अल्लाह के नबी बाकी औरतों के साथ जैसे निकाह हुए वैसे ही ये काम करें, लेकिन हिचकिचाहट थी। अल्लाह ने एक दिन पैगाम दे दिया, मैंने आसमानों पे कर दिया, जाइए आपका निकाह हो गया। सुन लीजिए हज़रत ज़ैनब अपने बारे में क्या कहती हैं। हज़रत ज़ैनब और अज़वाजे मुतहरात रदी अल्लाह अन्हुन्ना, इनका आपस में ताल्लुक़ कितना प्यारा था। ज़ैनब दूसरी अजवाज यानी सौकने थी, उनसे कहा करती थी फ़ख्र के साथ, तुम सब के निकाह तुम्हारे वली वारसों ने किए, और मेरा निकाह खुद अल्लाह ताला ने सातवें आसमान पर करा दिया। जी, ये सही बुखारी की रिवायत है 7420। अल्लाह ने हुक्म दिया, जाइए नबी अपनी बीवी के पास, आपके लिए वो हलाल है। आप कहें हाय हाओ ये कैसे, वैसे वो मालिक है, किसके नाम पर रिश्ता जुड़ता है। सूरह निसा की पहली आयत जाके पढ़ लीजिए, या अय्युहन नास उत्तकू रब्बकुमल्लज़ी, और उसमें क्या था, अल्लज़ी तसालूना बिही वल अरहाम, जिसका नाम लेकर रिश्ते जोड़ते हो उससे डरो। तो याद रखिए ये एक यूनिक बात थी, अल्लाह ने उस औरत को ये शान दे दी। तो बहरहाल वाक़यात में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन वक्त की इतनी गुंजाइश नहीं होती, बहुत कुछ सीखने की बात है। आज के दौर के माशरे के अंदर जो भी खराबियां और कमियां बेशी हैं, उनको भी ख़त्म करने के लिए स्टैंड तो लेना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों से अपने आप को बचाना है। फिर इसके बाद जो तीसरा अहम टॉपिक आखिर में, वो है ख़त्म नबूवत। ख़त्म का लफ्ज़ आया तो पढ़ लीजिए आयत 40 के साथ, ख़ातिम मोहर को कहते हैं, और मोहर आखिरी अमल को कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत का ख़ात्मा कर दिया गया। आपके बाद जो भी नबूवत का दावा करेगा वो नबी नहीं, कज़्ज़ाब और दज्जाल होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही जो इस्लाम में सबसे पहला फितना उठा था, वो झूठी नबूवत का दावा था। ये नोट कर लीजिएगा, कैसे था। अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे कि एक शख्स ने झूठी नबूवत का दावा किया, उसका नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ख़त लिखा, और ख़त क्या था ज़रा टेक्स्ट नोट कीजिएगा, इला मोहम्मद रसूलुल्लाह मिन मुसैलमा रसूलुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह। और उसने उसमें आपको पैगाम दिया कि मैं आपको ये ख़त इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये बता दूँ कि आज के बाद नबूवत के कामों में अल्लाह ने मुझे आपका मुआविन बना दिया। अल्लाह के नबी ने उसका ख़त पकड़ा और ऐसे फाड़ा, ऐसे, और फाड़ के आपने कहा अगर कासिद का कत्ल जायज़ होता तो मैं इस कासिद यानी एम्बेसडर को कत्ल करवा देता जो ये ख़त लेकर आया। फिर आपने उसके जवाब में एक ख़त लिखा, और आपने लिखा मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह इला मुसैलमा कज़्ज़ाब। ये था वो लफ्ज़ जिससे मुसैलमा कज़्ज़ाब का नाम पड़ा। इतना बड़ा फितना था, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने ज़िंदगी में ख्वाब में दिखा दिया था कि आपके बाद लोगों ने झूठी नबूवत के दावे किए। आपने फरमाया कि मेरे बाद 30 झूठे कज़्ज़ाब पैदा होंगे, और इसी तरह से उलमा कहते हैं कि कोई झूठी नबूवत का दावा करे वो तो दीन से निकला, उस दावा करने वाले को जाकर कोई कहे कि मुझे सबूत दिखाओ वो भी काफिर है। यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? यानी नबूवत का दावा तो बड़ी बात, किसी के इस दावे के जवाब में उससे दलील मांग लेना ये उससे भी बड़ी भी बात है, ये इतना संजीदा मौजू है। लेकिन अफसोस, सदहा अफसोस, ये हम मुसलमान बड़े सगीर पाक व हिंद में रहने वालों ही को ये शर्मनाक ठप्पा मिला हुआ है पूरी दुनिया में। हमारे ही इस इलाके के एक शख्स जो लुध में रहता था, लुधियाना की तरफ नस्बत करके, उसने झूठी नबूवत का दावा किया। 100 से ज़ायद तवातर अहादीस हैं कि हज़रत ईसा वापस आएंगे। वो सारी हदीसों को अमेंड करके कहा कि मसीह नहीं आएंगे, मसीले मसीह आएंगे। लंबा टॉपिक है, मुझे नहीं पता कि यहाँ ये टॉपिक कितना अहम है। बाहर की दुनिया में मैं क्या बताऊँ आपको, जहाँ भी मुस्लिम्स की रीच हुई हुई है ना गवर्नमेंट के लेवल पे, वहाँ ये गिरोह है। आप कभी उनके सेंटर्स और उनके बड़े बड़े खाने तो देखिए। तो याद रखिए, अपने बच्चों को समझाएं। आज इतना बिग इशू हमारे पास आता है अक्सर, माँ आके कहती है मेरी बेटी ने एक लड़का पसंद किया, साथ पढ़ता था, शादी करना चाहती है। अच्छा जी, चलो ये तो अब हो ही गया, पहले एक्सपेक्टेड था अब एक्सेप्टेड है, अब क्या मसला है? वो लड़का फलां है। या अपने आप को कादियानी कहें, अहमदी कहें, जब वो कहते हैं तो हमें कहने में क्या हर्ज है? तो बताइए कि अब हम क्या करें। मेरे पास इतने मोटे उनके दलाइल लिखे पड़े हैं, अगर आप में से किसी का कोई ऐसा इशू हो, मैं आपको चंद नाम दे दूंगी, आप जाके उन्हीं की लिखी हुई किताबें पढ़ लीजिए, जो कुफ्रिया कलाम है उसमें और जो शिरकिया बातें हैं और उस दीन में आने के बाद जो रंग रौनक है। ह्यूस्टन में हमारे पास एक पूरी फैमिली थी, बहुत बिग फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह दादी से लेकर नवासी, पोती, माँ सब क्लास में आती थी। उनकी एक बच्ची मेरी फर्स्ट क्लास में, यानी मेरी यंग बच्चियों की क्लास में थी। तो आज से कितने साल पहले की ये कहानी है, उसने जो मुझे कहानियाँ सुनाई, उसका लुबे लुबाव था। कहती थी कि कोई बड़ा ही अपने मन पे काबू पाने वाला होगा जो ये दीन छोड़कर इस्लाम पे आ जाए। क्यों? सब कुछ जायज़ है, जिना जायज़, शराब जायज़, और सब कुछ जायज़। करना के हर जुम्मे को जाके जमात खाने में कुछ पैसे डाल दो। हम देते हैं 2.5, वो भी रो के देते हैं 2.5, वो 25% देते हैं। और उनके लफ्ज़ हैं कि अगर ये सब मुसलमान हो जाएं, पूरी दुनिया की मस्जिदें पेड ऑफ हो जाएं, इतना देते हैं। बच्चा बच्चा जाके दीवारें धो रहा होता है अपने जमात खाने की, मैंने खुद भी देखा है। इतना इन लोगों के अंदर नेकी का जज्बा है, ज़ुबान के मीठे और सब कुछ। तो याद रखिए, अकीदा बहुत बड़ी चीज़ है, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मज़ीद चंद बातें जो हमने सीखी, नंबर एक, आप सब पे इंशाल्लाह कहा करें, क्या पता आपकी इंशाल्लाह ही आपको बामल बना दे। अल्लाह के अहकामात के आगे सर झुका देना, अपने अंदर मिसाली इंसानों की खसूसियात पैदा करनी है, अल्लाह सुबहान तआला को कसरत से याद करना है, अल्लाह और रसूल के अहकामात में कोई तब्दीली नहीं करनी, इस्लाम की दावत के रास्ते में जो तकलीफ़ें आएँ उस पर सब्र करना है, और अल्लाह के रास्ते में किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करना। अल्लाह ताला आसान फरमाए। आगे चलते हैं रुकू नंबर 3, 41 से 52। टॉपिक लिखिए, बेमिसाल ताल्लुकात। अल्लाह आपको मुझे कैसे मुआशरे में देखना चाहते हैं कि जहाँ बहुत ही खूबसूरत ताल्लुकात हों। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहू बुकरतन व असीला। मुसलमानों, अल्लाह का ज़िक्र बहुत किया करो। नोट करें, इस सूरत में बार बार ज़िक्र की बात आएगी, तो कीजिए आप भी ज़रा सा ज़िक्र। बोलिए सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। जन्नत में एक दरख्त लग गया हदीस की रोशनी में। और सुबह शाम इसकी पाकीज़गी बयान करो, वही है जो तुम पर रहमतें भेजता है और इसके फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ रहमत करते हैं ताकि तुम्हें अंधेरों से उजाले की तरफ ले जाए। और अल्लाह ताला मोमिनों पर बहुत मेहरबान है। जिस दिन ये अल्लाह से मुलाकात करेंगे, इनका तोहफा सलाम होगा, इनके लिए अल्लाह ताला ने बाइज़्ज़त अजर तैयार कर रखा है। ए नबी, यकीनन हम ही ने आपको, अब यहाँ से नबी की खूबियाँ नोट करिएगा, खसाइस नबुव्वा, पहली चीज़, आपको रसूल बनाकर गवाहियाँ देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला भेजा है। اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ. آپ مومنوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے, اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیے, اور جو تکلیف ان کی طرف سے پہنچے اس کا خیال بھی نہ کیجئے. اللہ پر بھروسہ کیے رہیں, اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا. اے اللہ ہم سب کے کام بھی بنا دے. اے مومنو, جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو. جی, اٹس کوائٹ پاسیبل. کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ رشتہ پورا بھی بنا بھی نہیں, جڑا بھی نہیں, تو ٹوٹ جاتا ہے. پر ہمارے معاشرے میں تو ہاں ہوں تو اتنا کچھ شروع ہو جاتا ہے کہ اللہ کی بنا. تو فرمایا اگر ایسی نوبت آ جائے تو طلاق دے دو, تو ان پر تمہارا کوئی حق عدت نہیں. یعنی رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو عورت کو عدت نہیں کرنی پڑے گی. کہ جسے تم شمار کرو پس تم کچھ نہ کچھ انہیں دے دو, پھر بھلے طریقے سے رخصت کرو. اے نبی, ہم نے آپ کے لیے وہ بیویاں حلال کر دیں جنہیں آپ ان کے مہر دے چکے, اور وہ لونڈیاں بھی جو اللہ نے غنیمت میں آپ کو دی. ماریا قبطیہ کی طرف اشارہ ہے. اور تیرے چچا کی لڑکیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں اور تیرے ماموؤں کی بیٹیاں اور تیری خالاؤں کی بیٹیاں بھی جنہوں نے تیرے ساتھ ہجرت کی, اور وہ ایمان والی عورت جو اپنا نفس نبی کو ہبا کر دے, یہ اس صورت میں کہ خود نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں. یہ خاص طور پر صرف آپ ہی کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے نہیں. یعنی جن سے اللہ نے بڑے کام لینے ہوتے ہیں نا, ان کو سہولتیں بھی زیادہ دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے دین پھیلنا تھا. آپ ایک مصروف انسان تھے, عام مردوں کو چار شادیوں پہ مقید کر دیا, کیونکہ اس میں اس سے زیادہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ چار کو بھی راضی کر سکے. ایک کوئی کر لے تو بڑی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چار سے زائد شادیوں پہ آج بڑی تنقید ہے, تو یہ ساری باتیں پڑھتے ہوئے سمجھیے گا. آپ کی مختلف بیویاں اصل میں امت کی ٹیچرس تھیں. بہت سارے ایسے نجی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھول کر نہیں بیان کر سکتے تھے. عورتوں کو آپ سے بات کرتے ہوئے جھجک آتی تھی, تو ایسے مسائل نبی کی ازواج کے ذریعے سے صحابیات پوچھتی تھیں, جس میں غسل کے, صحبت کے, تعلقات کی لمیٹیشنز کے مسائل بھی آتے تھے. تو آپ کی بیویوں نے آپ کے بعد ایک بڑا عرصہ امت کو ٹیچ کیا. بڑے بڑے صحابہ کرام ازواج مطہرات کے اسٹوڈنٹس بن گئے. تو یہ چیزیں یہاں بتا کر بتایا گیا کہ آپ کو اللہ نے اس بات سے بھی آزاد کر دیا تھا کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ باری رکھیں نہ رکھیں. عام مردوں میں تو یہ حکم ہے نا کہ دو بیویاں ہیں تو اس میں بھی انصاف چاہیے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آزاد کر دیا تھا اس بات سے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے سب کو ان کے حق عطا کیے. فرمایا ہم اسے بخوبی جانتے ہیں جو ہم نے آپ پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں احکام مقرر کر رکھے ہیں, یہ اس لیے کہ تجھ پر حرج واقع نہ ہو. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑے رحم والا ہے. ان میں سے بھی جسے تو چاہے دور رکھ اور جسے چاہے اپنے پاس رکھ لے, اور اگر تو ان میں سے بھی کسی کو اپنے پاس بلا لے جنہیں تو نے الگ کر رکھا تھا, تو تجھ پر کچھ گناہ نہیں. اس میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ ان عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں, اور جو کچھ بھی آپ ان کو دے دیں اس پر سب کی سب راضی رہیں. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑا حلم اور حلم والا ہے. اس کے بعد اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں, اور نہ یہ درست ہے کہ ان کے بدلے اور عورتوں سے نکاح کریں اگرچہ ان کی صورت اچھی بھی لگتی ہو, مگر جو تیری مملوکہ ہو. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورے نگہبان ہے. پچھلے پارے کے اینڈ پہ ہم پڑھ کر آئے ہیں نا, اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو اختیار دے دیا تھا. جب ذرا سا انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں تھوڑا زیادہ دے دیا جائے, تو اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے تھوڑا نہیں, میں زیادہ دے دیتا ہوں, لیکن اس کے بعد اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا, مشورہ کر لو اپنے ماں باپ سے. تو سب سے پہلے جو بیوی بولی وہ عائشہ تھی, جو عمر میں سب سے چھوٹی تھی. کہا اللہ کے نبی آپ کے معاملے میں کسی اور سے پوچھوں گی. اللہ کرے ہمارا بھی اپنے شوہروں سے یہ تعلق ہو, میں آپ کے بارے میں کیوں پوچھوں. کہنے لگی میں سب چھوڑ دوں گی لیکن آپ کو نہیں چھوڑوں گی. آج اسی عائشہ سے محبت کرنے والے اتنے درد خند پیدا ہو گئے, کہتے ہیں ہاں اتنی چھوٹی عائشہ بیچاری. نعوذ باللہ, یہ یاد رکھیے جھوٹی محبتیں ہوتی ہیں. تو جب آپ کی بیویوں نے آپ کو چوز کر لیا, اس کے بعد کی آیتیں ہیں ساری کہ اللہ نے اپنے نبی کو کہا دیر از نو مور. دیکھیں نبی کی شادیاں, یہاں ایک چھوٹی سی چیز سمجھ لیجیے, عورت کا مقام دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کو کتنی عزت اور محبت دیتے تھے. آپ خود کہتے تھے کہ اللہ نے میرے دل میں عورت کی محبت ڈالی. حبیبہ, خوشبو, اور عورت, بیوی مراد ہے. एक स्लाइड है आपके सामने, सिर्फ शौर को बेदार करने के लिए पढ़ देती हूँ। आपको अपने ऊपर मान होने लगेगा कि अल्लाह ने आपको औरत बनाया। नबी सल्लम एक औरत की गोद में पैदा हुए, जिसने लपेटा वो भी एक औरत थी यानी दाया। पहला बंदा जो आपको देखने आया वो भी एक औरत थी। नबी सल्लम अबवा में फौत हुए तो जिसने आपको वापस मक्का पहुंचाया वो भी एक औरत थी। आप हिरा से वापस आए तो सबसे पहले आपको जिसने तसल्ली दी वो भी एक औरत थी। और जिस औरत ने आपके ऊपर चादर उड़ाई जब मेलूनी और दस्से रूनी के जवाब में, वो भी एक औरत थी। और पहला इंसान जिसने आपकी नबूवत की गवाही दी और मुसलमान हुई, वो भी औरत थी। और वो भी एक औरत ही थी जिसे सबसे पहले आपके साथ नमाज़ पढ़ी। और वो भी एक औरत ही थी जो सबसे पहले इस्लाम के नाम पे शहीद हुई। बीबी सुमैया की तरफ इशारा है। और वो भी एक औरत थी कि जिसने नबी सल्लम के लिए मिंबर सजा दिया था मदीना में लाकर, जब आप खुतबा देते थे और एक दरख्त के तने से टेक लगाते थे। एक दिन आप आए तो वहाँ बड़ा खूबसूरत मिंबर पड़ा हुआ है, पता चला एक औरत ने उसको बनवाया और लाकर आपके लिए रख दिया। और जब नबी सल्लम इस दुनिया से कूच किए तो एक औरत के सीने के साथ आपका सर था, आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु अन्हा। और नबी सल्लम का नसब नामा भी देखें तो माँ की तरफ से, औरत की तरफ से चलता है। याद रखिए, औरत छोटी चीज़ नहीं है। आपको मुझे अपने औरत होने पे फ़ख्र होना चाहिए। अल्लाह सुबहाना ताला आपको मुझे मामलात अच्छे रखने वाला बनाए। आप देखिए कि आपको पढ़ते हुए इस साल के दौरे कुरान के ऊपर, तो मैं एक हज उमरा कर रहा हूँ ना, तो मेरे लिए ये थोड़ा होगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि अल्लाह इस टॉपिक में इतनी बरकत देगा। दिन रात वर्ल्ड वाइड इस टॉपिक का जो फीडबैक आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। कितने घर जुड़ रहे हैं, कितने रूठे हुए मन रहे हैं, और अल्लाह करे जो रह गए वो भी मन जाए बाकी पारों में। तो याद रखिए, रिश्तों की एक अहमियत होती है। क्या करें, कभी मना लिया करें, कभी मान जाएं, कभी रूठ गए तो कभी मान गए। ज़िंदगी में रूठना रुठाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ रिश्तों को नुकसान देती है ना, वो ज़िद और अना होती है। ज़िद आ जाएगी, अना आ जाएगी, रिश्तों से चाहत ख़त्म हो जाएगी। तो जैद और ज़ैनब दोनों अच्छे थे मगर आपस में नहीं बनी। अल्लाह ताला जिनकी नहीं बन रही उनके दिलों को जोड़ दे। फिर इसी तरह ज़िक्र की बातें हुई तो इस पर एक हदीस नोट कीजिएगा। तिरमिज़ी की रिवायत है 3377। एक मरतबा अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या मैं तुम्हारे बेहतर अमल और बहुत ही ज़्यादा पाकीज़ा काम और सबसे बड़े दर्जे की नेकी और सोने चांदी को राह अल्लाह में खर्च करने से भी ज़्यादा बेहतर और जिहाद से भी ज़्यादा अफसल काम ना बताऊँ? सोचिए ज़रा, कितना रग़बत दिलाने वाला अंदाज़ है। लोगों ने पूछा है नबी सल्लम वो क्या है, आपने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल का ज़िक्र करना। बोलिए ज़िक्र कीजिए, जो दिल करता वो कीजिए। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हदीस क़ुदसी है, अल्लाह ताला फरमाता है, जो मुझे अपने दिल में याद करता है मैं भी इसको अपने दिल में याद करता हूँ, और जो मुझे किसी जमात में यानी महफिल में याद करता है मैं भी इसको जमात में याद करता हूँ जो उस जमात से बेहतर होती है। मुराद फरिश्तों का गिरोह। ये बुखारी की रिवायत है 7405। इस वक्त आप और मैं क्या कर रहे हैं ये बताइए। कुरान जिक्र की आला तरीन फॉर्म है। पीछे पढ़ के आए सूरत हिजर में, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। कैसे? देखिए कुरान पढ़ते हुए कौन याद आता है? अल्लाह, तो ज़िक्र है ना। फिर उसकी दूसरी फॉर्म नमाज है। कैसे? कल के पारे की पहली आयत, इन्नस सलात तन्हानिल फख्शाई वल मुनकर वल ज़िक्रुल्लाहि अकबर। तो ज़िक्र करना, ज़िक्र के अंदर मशगूल रहना, ये असल में इस बात की दलील है कि आपका दिल अल्लाह से जुड़ा हुआ है। चलिए इंशाल्लाह के साथ कुछ कामों की नियत करते हैं। क्या सीखा? सुबह शाम के अज़कार को अपना मामूल बनाना है, अपने अंदर दाईये दीन की सिफात पैदा करनी है, मुनाफिकीन का कहना नहीं मानना, अल्लाह को कारसाज समझना है, निकाह को आसान बनाना है, शादियां करते हुए अल्लाह की हदूद को तजावुज़ नहीं करना। तीन दफ़ा बोले, اللہ تعالیٰ آپ کی قبول کرے۔